اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. और इनका एक और तरह का शिर्क ये, एक तो खुदा का बेटा बना लिया और दूसरी तरह का शिर्क ये था कि इन्होंने बना लिए अपने अहबार को, मैंने आपको बताया ना उलमा को कहते हैं हेबर से, और रोहबान को क्या बना लिया, रब बना लिया अल्लाह के सिवा, और मसीह बने मरियम को भी बना लिया, यानी उलमा को और इनको तो बनाया और अपने पैगंबर को भी रब बना लिया। अब रब कैसे बना लिया, ये तो आप देखें, आदि बिन हातिम जो थे, हातिम ताई के बेटे, ये जब मुसलमान हुए और इन्होंने ये आयत सुनी तो उन्होंने फरमाया या रसूलल्लाह हम तो ये उलमा दरवेशों को, हम तो उनकी इबादत नहीं करते थे, यहाँ पे ये कहा गया कि उनको रब बना लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदि क्या तुम इससे बेखबर हो कि अल्लाह सबसे बड़ा है, क्या तुम्हारे ख्याल में अल्लाह से बड़ा कोई और है, क्या तुम इससे इनकार करते हो कि माबूदे बरहक अल्लाह के सिवा कोई नहीं, क्या तुम्हारे नज़दीक इसके सिवा कोई और इबादत के लायक है। फिर ये उस वक्त की बात है जब वो इस्लाम नहीं लाए थे, फिर इस्लाम ले आए, तो उन्होंने जब ये बात कही ना कि हम तो नहीं उनको रब मानते थे, फिर यहाँ पे क्यों कहा गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या उनके हलाल करता को तुम हलाल और उनके हराम करता को हराम नहीं कहते थे, यानी जिस चीज को वो कह दे हलाल है वो हलाल होगी, जिसको वो कह दे हराम है वो हराम होगी, क्या तुम ये नहीं करते थे। तो उन कहने लगे हाँ ये तो हम करते थे। तो फरमाया तो यही तो रब बनाना है, यही रब बनाना है कि यानी आप अल्लाह ताला ने जो हलाल और हराम किया है उसको तो पीछे छोड़ दिया, उसकी तो कोई परवाह नहीं की, और जो बस जिसको हम कहते ना कि वो जी हमारे तो इमाम साहब ने ये कह दिया, हमारे इमाम ये कहते हैं, हमारे मौलवी साहब ये कहते हैं, हमें तो फलाह ने ये बता दिया, बस वो उसको मान लेना और उसी को कुरान और हदीस समझ लेना। अब देखें कि इन लोगों ने तो जाहिर है ये किया ही इसी वजह से, आगे इनके दीन में क्या क्या चेंजेस आ गई, क्योंकि जिन चीज़ों को भी उन्होंने कर दिया बस हलाल हलाल हो गई, हराम हराम हो गई, ये तो फिर कुफर हो गया। ये इसलिए क्योंकि ये सिर्फ अल्लाह ताला का हक है कि वो किसी चीज को हलाल करे या हराम करे, ये इंसानों की अथॉरिटी नहीं है, अल्लाह ताला ने किसी इंसान को, हत्ता कि अपने नबी को भी ये राइट नहीं दिया कि आप जो मर्जी हलाल हराम करते रहे। कैसे, इसकी दलील क्या, इसकी दलील क्या है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को भी ये राइट नहीं दिया कि वो अपनी मर्जी से ऐसा करें। जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, दूसरी तीसरी दफा कोर्स करें, उनको जवाब देना चाहिए। सूरह तहरीम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने ऊपर शहद को हराम कर लिया था, हाँ, तो अल्लाह ताला ने उसी वक्त मना कर दिया कि ऐ नबी आप हलाल को हराम नहीं कर सकते अपने ऊपर। बिल्कुल, तो इससे पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से किसी चीज़ को भी हलाल हराम नहीं कर सकते थे, ये तो अल्लाह ताला ही है जिस, ये यहाँ पे जो हमने पिछली आयत पढ़ी ना कि वो अल्लाह और उसके रसूल के हराम को हराम नहीं बनाते थे, तो इससे पता चलता है ना कि रसूल भी उसी चीज़ को हराम कहता है जिसको अल्लाह ताला ने हराम कहा हो, खुद अपनी मर्जियों से नहीं बैठ के कोई दिल करा कोई चीज़ अच्छी पसंद आई तो हलाल कर दिया, ना पसंद आई तो हराम कर दिया, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो इससे हमें समझना चाहिए कि रसूल को भी खुद से अथॉरिटी नहीं है, तो कहाँ ये कि कोई उलमा कोई दरवेश उठ के, क्योंकि इन लोगों की बड़ी इज्जत होती है ना माशरे में, कि माशरे में वो लोग कहते हैं ये बड़े आलिम हैं जी, बहुत बड़े, ये यहाँ पर राहिब जो उतारे के दुनिया होता है उसको तो कहते हैं ये बहुत पहुंचा हुआ है, इसलिए कि उसने एक अपना खास सा हुलिया बनाया होता है, बस वो दुनिया से अलग थलग बैठा हुआ है, उसने जो कह दिया ना, दरवेश किस्म के लोग जैसे होते हैं, तो अब उसने अगर कह दी कि हमारे यहाँ भी बहुत कॉमन है, ऐसी बात नहीं है, उसने अगर कह दिया कि ये चीज़ नहीं है सही और इसको नहीं करना, बस ऐसे करेंगे जैसे कि कुरान हदीस ही होगी, अब ये मुंह से कोई नहीं कहेगा हमने रब बना लिया, लेकिन यही रब बनाना होता है। वैसे तो मुशरिकीन मक्का कौन सा कहते थे कि हमने किसी को रब बनाया, वो भी कहते थे कि ये हमारे बुत तो अल्लाह के हमें करीब करते हैं। इस रादी बिन हातिम ने भी कहा, क्योंकि वो पहले क्रिश्चियन थे ना, तो उन्होंने भी कहा कि हम रब तो नहीं बनाते, क्योंकि मुंह से तो कोई नहीं कहता। लेकिन ये अथॉरिटी जब आप किसी को भी दे देते हैं कि ये मुझे बताएगा हलाल हराम का, तो रब बनाना ही हो गया। आज भी आप देखें इनका जो पोप जो बात कह देता है ना, ये उसको वैसे के वैसे मान लेते हैं। पोप ने अगर कह दिया कि भाई ये होमोसेक्सुअलिटी अगर सही है, तो वो सही मान लेंगे उसको। इतना हद तक आप अंदाजा कीजिए कि वो हिस्ट्री को भी चेंज कर रहा है पोप। पोप ने कहा है कि ये जो हम समझते हैं कि यहूदी ईसा अलैहि सलाम के कातिल हैं, तो इस तरह से नहीं समझना, ये सही नहीं है, तो उसको मान के बैठ गए। हालांकि तो हिस्ट्री है, उसको भी वो बदल रहा है, तो उसको भी मान लिया। तो यही रब बनाना तो है। आप देख लें इसी तरह जो मुसलमानों में भी जो गुमराह फिरके हैं, इनमें भी क्या है, वो उनका जो बड़ा इमाम है, इमाम हाजिर है, चाहे आप जितने भी ये गुमराह फिरके हैं, आखानी हो गए या फिर ये कादियानी हो गए या ये, इनके भी बड़े जिस तरह से इनको बता दिया उन्होंने, बस वो वैसे ही माने। वो अगर कह दें सही, मुंह से बात निकाल दें कि ये चीज सही है और ये नहीं सही, फिर देखें कैसे उसको मानते। तो हमारे यहाँ भी कमी नहीं हुई कोई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया ना कि कदम ब कदम और बालिश्त ब बालिश्त तुम इनको फॉलो करोगे, हत्ता कि इनमें से कोई गो के बिल में भी घुस जाएगा तो तुम वहां घुसो। तो ये हो रहा है आज। याद रखे कोई काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया ना, या सहाबा ने नहीं किया, फिर भी हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी मस्जिद के मौलवी साहब ने बता दिया था हमें, हम फौरन मान गए सोचे समझे बगैर कि ये कुछ पढ़े भी हैं कि नहीं, इनको कुछ आता भी है कि नहीं। तो बस उनके उनसे सवाल किया और जो उन्होंने जवाब दे दिया, बस अंधों की तरह उसको मान लिया। आप पता है आपको इमाम मालिक कितने बड़े इमाम हैं हदीस के, उनके पास एक आदमी आया, उसने पूछा वुजू का तरीका बता दे मुझे। फरमाने लगे तुम्हारा सवाल गलत है। उसने फिर यही बताया, अच्छा वुजू कैसे करते हैं, फिर मैं गलत सवाल कर रहा हूँ। फिर उसने पूछा, फिर उसने कहा मुझे आप बता दें मेरे सवाल में क्या गलती है। फरमाते हैं मैं कौन होता हूँ वुजू का तरीका बताने वाला, तुम ये मेरे से पूछो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुजू का तरीका क्या था, ये पूछो मेरे से। तो आप भी अपने जहां पे भी जाकर पूछें उनसे ये पूछा करें कि इस मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे। अब फिर वो भी कुछ सोचेगा ही कहने से पहले। अगर वाकई आप अल्लाह के रसूल पर ईमान रखने वाले हैं, तो फिर ये देखना है कि वो क्या करते थे, उनकी नमाज कैसी थी, उनकी तौहीद का अकीदा क्या था। यानी कि अपने अपने अकीदे बना के बैठे हैं, जिसकी जो समझ में आया। नहीं तो हमारे तो बड़ों ने ऐसा कह दिया, वो तो पीछे उन्हीं के चल रहे थे ना, ईसाई और यहूदी भी तो यही थे, वो पीछे से चलता आ रहा था। मुशरिकीन ने मक्का भी तो यही कहते थे, हमारे बड़ों ने ऐसा किया। उसके बाद कोई उसके अंदर हमने सोचना नहीं होता कि जो बड़ों ने किया वो सही भी कर रहे कि नहीं। एक दुनिया कह रही कि भाई ये काम ना करो, आप ना जाके मिजारों पे सजदे करो, आप ना कब्र परस्ती करो, आप ना इनसे मांगो, नहीं तो। लेकिन हमारे बड़े तो करते थे, हमने तो यही करना है। अब इस चीज का क्या जवाब हो सकता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया क्या उनके बड़े या चाहे अकल ना रखते हो, चाहे कोई इल्म ना रखते हो, तो फिर भी ये उनकी ही पैरवी करेंगे। तो फरमाया कि इन्होंने अपने अहबार और रहबान को रब बना लिया, यानी रब बनाना क्या होता है ये समझ लें यहां से। चाहे वो मुंह से यही कहते हैं कि हम तो नहीं, हम तो अल्लाह रसूल को ही मानने वाले, लेकिन जब कोई भी शख्स अपने मशाइख को या अपने इमामों को या अपने, अब वाज़े हदीस आ जाए, वाज़े हदीस आ जाए, तो उसके आगे भी ये कहना कि नहीं जी हमारे इमाम ने ये कहा है, इसको आप क्या कहेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनके सामने वाज़े हदीस आते, कहते हैं ठीक है हदीस सही है, लेकिन हम तकलीद अपने इमाम की करते हैं, हम मुकल्लद हैं उनके, तो हम उनकी मानेंगे। अच्छे भले लोग भी ऐसे कहते हैं। हालांकि ये सारे उलमा हो गए या जितने भी कोई लोग हैं, इंसान ही तो हैं, उनसे भी गलती हो सकती। कुरान और सुन्नत को मयार बनाए, और इसमें फिर कोई तरफदारी नहीं होनी चाहिए, कोई बायस नहीं होना चाहिए कि ये हमारे फिरके के हैं और ये हमारे खानदान के हैं, इसलिए हमने इनको मानना है। अब ये इन्होंने जो कह दिया बस वो हरफे आखिर है, ये नहीं होना चाहिए। वमा उमीरु इल्ला लियाबुदु इलाह वाहिद, और इनको नहीं और कुछ हुक्म दिया गया था, सिर्फ यही तो कहा गया था कि एक इलाह की बंदगी करना। और इन्होंने देखो बेटे बना लिए, औलाद बना ली अपने, और इनको उलमा को रब बना के रख लिया। इनको तो ये कहा गया था सिर्फ कि एक अल्लाह की बंदगी करनी है, इबादत लियाबुदु की इबादत करें, और इबादत का कॉम्पोनेंट है, इबादत का जुज्व है इतात। इतात अलग नहीं है इबादत से, याद रखें। इबादत के अंदर उसके मीनिंग में इतात है। हम सोचते हैं ये ला इलाहा इल्लल्लाह तो कह दिया, ये तो मान लिया कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं और हम उसके सिवा किसी को माबूद नहीं समझते, किसी और की इबादत नहीं करते उसके सिवा। लेकिन इबादत तो हमने ये कहने का कह दिया कलमा, लेकिन इताअत हमने नहीं करनी, वो हमारी जो मर्जी होगी वो करेंगे, ऐसा नहीं है। जब आपने किसी को माबूद मान लिया ना, तो आपने कह दिया मैं हम इसकी इबादत करेंगे, मतलब हम इसकी इताअत करेंगे, इताअत उसके अंदर है। अब ये क्वेश्चन नहीं है कि आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे। ला इलाह इल्ला हु, नहीं कोई इलाह मगर वो, सुबहानहु, पाक है वो, किस चीज से पाक है, अम्मा युशरिकून, इससे जो वो शरीक ठहराते हैं। इलाह कौन होता है, जो इबादत के लायक हो। ठीक है, लोगों ने दुनिया में अल्लाह ताला को रब तो मानना है, इलाह नहीं मानते थे, रब तो मान लेते थे, फिर भी कह देते थे हाँ ये पैदा किया अल्लाह ने, आसमान अल्लाह ने पैदा किया, जमीन अल्लाह ने पैदा किया, हमें अल्लाह ने पैदा किया। लेकिन जब इबादत करने का वक्त आता था तो फिर किसी और को माबूद बना देते थे। अब आप देखें ना, आप सोचें, जब हजरत अदी बिन हातिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो उनके गले में एक सलीब लटक रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अदी इस बुत को फेंक दो, और फिर ये फरमा के ये आयत पढ़ी थी, जब वो मुसलमान होने के लिए आए थे उस वक्त की बात है, कि वो सलीब लटक रही थी। अब मुझे बताएं कि ये जो सलीब है, ये क्रॉस का जो साइन है, ये कहाँ से आया कि ये सलीब को इतना मुकद्दस समझते हैं, सलीब के निशान को अपना निशान समझते हैं? क्या ईसा अलैहि सलाम ने भी सलीबें लटकाई थी? क्या ईसा अलैहि सलाम ने ये बताया था कि सलीब बहुत मुकद्दस चीज है? और क्या वो सलीब को इस तरह मुश्किल कुशा समझते थे कि जैसे ये इस तरह समझते हैं और ऐसे सलीब का निशान भी बनाते हैं? तो ये कहाँ से आया? इससे पता चलता है ना कि इनके उलमा ने और इनके रोबानों ने इनको उल्टे रास्ते पे लगाया, ये मुशरिकाना कल्चर उन्होंने पैदा किया है। तो मुशरिकाना बातें कहाँ से आती हैं? जब अल्लाह की किताब है ना, उसके अंदर, उसको तो एक तरफ डाल के और बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी सनद के हलाल और हराम डिटरमिन किए जाएं, फिक्स की जाए ये चीज हलाल है। अल्लाह की किताब को नहीं देखा, हदीस को नहीं देखा, और बस खुद से ही। तो ये यहीं पे तो शिर्क आता है, ये इसी को तो शिर्क कहा गया यहाँ पे, ये भी एक किस्म का शिर्क है, रब बना लेना। तो बगैर सनद के, बगैर दलील के, यूं ही बस चलते आ रहा है, हमारा तो चलता आ रहा है, हमारा तो ऐसे ही है, फलाने ने कह दिया, फलाने ने कर दिया। कोई आपको बता भी रहा है कि भाई देखो दीन के अंदर इस चीज की नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं किया कभी, सहाबा ने नहीं किया, फिर भी टस से मस नहीं होते, फिर भी छोड़ने को तैयार नहीं। क्या चीज है जो छोड़ने को तैयार नहीं उनको होने देती कि नहीं बस हम कर रहे हैं हमेशा से, बस हम कर रहे हैं? ओ भाई, वो आपके पास बुखारी है, मुस्लिम है, आपके पास और अहादीस की किताबें, कहीं से तो आप लाके दो ना कि ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते रहे थे, मीलादें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाई थी और की थी, और इस तरह झंडियां लगाई थी, और इस तरह से खुशियां मनाई थी और सहाबा से ज्यादा उनसे मोहब्बत करने वाले कौन थे? तो कहीं से तो लाके दो, कहीं से तो लाके दो कि ये कुल होते हैं, 40 में होते हैं, ये सब बरसियां होती हैं, क्यों नहीं बरसियां मनाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा की, हजरत हमजा की, अपनी बेटियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर फौत हो गई, क्यों नहीं मनाई? क्यों नहीं उनके 40वें किए? क्यों नहीं उनके कुल किए? उनको नहीं कुल आते थे क्या? लेकिन नहीं, हमने अच्छा किसी को बता भी देंगे ना, मान के नहीं देना, क्यों? इसलिए बस अपनी जिद के ऊपर के हमें तो यही बताया गया, हमने यही करना। क्या वो जो बताने वाले हैं वो अल्लाह के नबी से भी ज्यादा आगे हो गए हैं आपके लिए? सवाल तो ये है कि ये चीजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता, सहाबा को नहीं पता, इनको पता है कि ये करना चाहिए। कितनी दफा सहाबा कराम या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कितने ऐसे मौके आए कि जो बहुत टेंशन के थे, जिस अब अजाब का ही मौका देख ले, उन्होंने क्यों नहीं आयत करीमा के खत्म करा लिए? घर घर औरतें तो फारिग ही थी ना, उनको बिठा देते, वो तो आयत करीमा पढ़ती रहती गुठलियों पर, उन्होंने तो नहीं ऐसा किया। यानी हमारी सारी चीजें जो है ना, यहाँ पे आके जो बिदतें हम करते हैं फेल हो जाती हैं, अगर हम इस आयत को समझ लें कि इन लोगों ने जो हमें बताया कि ये करो और ये ना करो, ऐसे चलना और ऐसे नहीं चलना, तो ये चीजें क्या खुद से बनाई हुई हैं या वाकई ही अल्लाह रसूल ने बताई हैं? लेकिन हम पता नहीं क्या अकलों को भी पर्दे पड़ जाते हैं कि उसमें हमने दलील नहीं मांगी, उसमें हमने नहीं ये कहना कि कोई ये नबी अलैहिस्सलाम का भी तरीका है। देखें तो सही, फिर आपके इमाम क्या कहते हैं या आपके जिनसे भी पूछने जाते हैं वो क्या कहते हैं? क्या उनके अंदर इतनी जुर्रत होगी कि वो ये कहें कि हाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे करते थे? अच्छा फिर लाओ दिखाओ कहीं से। तो दीन के अंदर वो ही चीज होगी जो अल्लाह रसूल ने बताई, उससे अलावा नहीं होगी। दीन की बात है, हाँ दुनियावी मामलात में आप अपने दुनियावी मामलात में क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, यानी कोई रोटी खा ले, कोई चावल खा ले, कुछ है वो उसके ऊपर नहीं है कोई पाबंदी। आप गाड़ी में बैठे, जहाज में बैठे, आप घर में क्लॉक लगाएं, अपने बाजू पे घड़ी लगाएं, पेन से लिखें या कंप्यूटर पे काम करें, इन चीजों के ऊपर नहीं है। अगर दीन में नहीं आप अपनी तरफ से चेंजेस कर सकते, देखें अब इन्होंने की तो क्या हाल हो गया इनके दीन का, सारा हुलिया ही बिगाड़ के रख दिया। वो तो दीन वो रहा ही नहीं जो ईसा अलैहि सलाम लेकर आए या जो मूसा अलैहि सलाम लेकर आए, कुछ और ही बना के रख दिया। बाद में आने वालों ने फिर आबार रहमान नहीं भी कर दिया। और ईसा अलैहि सलाम की जिंदगी में याद रखिए कि ये इंजील नहीं लिखी गई थी, बाइबल तो बाद में लिखा गया था, तो उनके नाम पे लगा के भी चीजें कर दें। युरीदूना, वो चाहते हैं, कौन चाहते हैं, ये मुशरिक, ये अहले किताब या ये जो सारे हैं गैर मुस्लिम हैं, आई यू तो फी ऊ नूर अल्लाह, कि ये बुझा दें अल्लाह के नूर को। अल्लाह का नूर क्या है? यानी इस दीन को, इस्लाम को ये खत्म कर दें। किस तरह खत्म करें? उनके पास कोई पावर तो है नहीं, भी अफवाहिम, अपने मुंह के साथ, कि वो अपनी मुंह की फूकों से फूक मार, जैसे हम कैंडल को फूक मारते हैं, तो वो चाहते हैं उनके पास जाहिर है ताकत, अल्लाह के मुकाबले में क्या ताकत है, ये अल्लाह का दीन है और बरहक दीन है। अब इस दीन को मिटाने के लिए उनके पास और कुछ नहीं है सिवाय मुंह की फूकों के, और मुंह की फूकें क्या है? प्रोपोगेंडा, नेगेटिव प्रोपोगेंडा। देखें अब कभी औरतों को खड़ा कर देते, वो जो औरतों को पता नहीं क्या उनकी मत में डाल दिया कि देखो तुम्हारी तो गवाही आदि है, देखो देखो कैसे ये, अब देखो चार शादियों का है, तुम्हारे हकूक का क्या बनेगा, देखो देखो भाई जन्नत में जाके आदमियों को तो हूरे मिल जाएंगे, तुम्हें क्या मिलना। यानी इस तरह करके ना उनको बदजन करना दीन से, देखो ये तो लौंडियों का भी कॉन्सेप्ट है, और देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया और ये किया और ये किया, ऐसे उन चीजों को नेगेटिव करके दिखाना जिससे इस्लाम से लोग बदसन हो जाएं, उनके दिल खट्टे हो जाएं। और इसी तरह आप देखते हैं जो आज के दौर में डिफरेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी पहले नहीं हुआ था, ये आप सोचते हैं आज से शुरू हो रहा है, नहीं, कुफर की तो जब से इस्लाम आया ये टसल तो हमेशा से है, ये तो आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई टसल, हक और बातिल के दरमियान जो मार के आपने हर नबी के कहानी में किस्से में ये बात देख ली है कि हमेशा मुकाबला हक और बातिल का रहेगा। और जब इस्लाम आया तो उस वक्त से इसको मिटाने के लिए कोशिशें हो गई। हाँ ये अलग बात है, आज की कोशिशें डिफरेंट तरह की हैं। आज मीडिया का दौर है, इंटरनेट पे देखें कितने लोग बैठे हैं, उनका काम ही क्या है, लोगों को सिर्फ इस दीन से बदजन करना। आज देख लें, पहले कभी इस चीज का सुना नहीं था कि ये कभी कॉमन हो कि कोई हदीस का इनकार कर ले। आज देख लें कितने सारे लोग हैं, आपके जानने वालों में भी कई लोग होते हैं जो आगे से कहते थे नहीं, जो हदीस तो बाद में लिखी, कि तुम्हें पता क्या है हदीस का, जाके पहले देखो तो सही हदीस है क्या। खुदा की कसम अगर आप कभी इस इल्म को जानने तो आपकी अक्ल दंग रह जाए कि यह हदीस कैसे हम तक पहुंची है, कैसे कितने रिजाल के पूरी जिंदगियां छान मारी गई और पूरी जिंदगियां उनकी महफूज हैं, उन रावियों की जिनसे हदीस आज तक पहुंची। एक बंदा अगर सिर्फ अपने जानवर को भी आगे चारा दिखा रहा है, उसके अंदर चारा नहीं है और वो जानवर को बुला रहा है, तो बुखारी ने उससे भी हदीस नहीं लिखी जो जानवर के ऊपर झूठ बोल सकता है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बोल सकते हैं। मैं इससे भी नहीं हदीस लूंगा, किसी के अंदर जरा सी भी देख लेते थे चीज तो कहते थे इसे हदीस नहीं लेनी, किसी के अंदर जरा सी भी ईमान की खराबी तो दूर की बात है, उसके कैरेक्टर में कोई चीज देख लेना या उसके हाफजे के अंदर के हाफजा जरा सा कमजोर है। मैं तो ये सोचती हूँ कि आज के अगर मुहदिसीन आज होते ना, तो हम में से तो किसी से भी ना हदीस लेते, क्योंकि हमें तो खुद भी नहीं अपना कुछ याद रहता, अपना फोन नंबर नहीं पता होता, अपने घर का एड्रेस भूल जाते हैं, क्या को वो जरा सा भी किसी के अंदर होता था ना, उससे नहीं हदीस लेते थे, सिका रावी से लेते थे, यानी उसकी सिका की भी कितनी सारी शरायतें हैं। आई विश कभी आप लोग ये चीज इल्म को देख सकें तो आपको पता चले, दिमाग खुल जाता है ये सोच के, या अल्लाह दंग रह जाती है अकल की, इतनी इसके पीछे मेहनत है। आज तो फिर भी कंप्यूटर के दौर है, वो किस किस तरह सफर करते थे और कैसे कैसे लोगों से लेते थे, और उसके बाद आज तक के दौर में जो इस चीजों की छांटी की गई है, कौन सी हदीस है किसी ने फैब्रिकेट करके कोई बना दी है, लोग शरपसंद भी तो होते थे, फैब्रिकेट की हुई है, खुद ही बनाई हुई है, मौजूआत के नाम से किताब अलग है जिसमें मौजू अहादीस है, फैब्रिकेटेड जयीफ हदीस अलग कर दी गई, जो स्ट्रॉन्ग अहादीस है वो अलग कर दी गई। यानी अब आप देखें हर टाइम में ना इस किस्म के शर पसंद लोग रहे हैं और आज भी हैं, जो इंटरनेट हो गया मेरा और आपका, ये टीवी पे, इस पे, टॉक शोज में किस तरह से लोगों के जहनों को पलूट किया जाता है इस दीन से हटाने के लिए, सिर्फ गैर मुस्लिमों को नहीं कि वो तो इस दीन के करीब भी ना है, उनके अंदर जिस तरह से नेगेटिव प्रोपोगेंडा करके उनके दिमागों को हटाया जाता है कि ये तो देखो जरा, ये मुसलमान तो ऐसे, मुसलमान तो ऐसे, ठीक है मुसलमानों में बहुत खराबियां होंगी, बहुत खराबियां हैं, वाकई हैं, मगर इस्लाम सच्चा दीन है, मुसलमान जितना भी खराब हो जाए लेकिन ये दीन बरहक है, इस पे नहीं कोई उंगली उठा सकता कि इसमें कोई खराबी है। आप देखें कि वो ये बातें ही है ना, ये चाहे लिख रहे हैं वो भी बातें हैं, चाहे बोल रहे हैं वो भी बातें हैं, अपने मुंहों के साथ इसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ तो वो देखें कितना प्यारा वो शेर है ना, नूरे खुदा है कुफर की हरकत पे खंदा जन, फूंकों से ये चराग बुझाया ना जाएगा। कोई ये सोचता है ना कि फूंकों से, अपनी फूंकों से इसको बुझा देगा, नहीं बुझा सकता। मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक प्रोफेसर हमारे इस्लामी मुल्क का ही, अल्लाह अकबर, किसी यूनिवर्सिटी में था, और इसमें क्या कहूँ कि किस तरह वो मजाक उड़ा रहा था, अल्लाह हिदायत दे इन लोगों को, दूध की नहरों का जो जन्नत में है, इस तरह हूरों का, इस तरह की बातों को इस कदर डिग्रेडिंग अंदाज में कर रहा था। मैं सोच रही थी अल्लाह अकबर, ये हैं वो लोग जो लोगों को दीन से भगाने वाले, दीन से दूर करने वाले, दीन के बारे में शकुक व शुभात और नेगेटिविटी डालने वाले लोगों के जहनों में। पहले ही दुनिया में जाहिर है मुसलमानों का एक वो स्टेटस नहीं है जो एक वक्त में हुआ करता था, जैसे मैंने आपको हजरत उमर की ये बात बताई है, क्या बात होगी उस वक्त मुसलमानों की, क्या उनका रोब और क्या उनका दबदबा और क्या उनकी शान होगी कि गैर मुस्लिम खुद ये शर्तें उनके आगे रख रहे हैं कि हम ये भी नहीं करेंगे, हम ये भी नहीं करेंगे, हम आपके नीचे लग के रहेंगे, हम ऐसे रख के रहेंगे। और क्या आज का वक्त है जब मुसलमान ऐसे फकीर बन चुके हैं कि वो उनकी चीजों को ऐसे देखते हैं जैसे तरसा हुआ कोई देखता है ना, कि इनका ये भी ले लूं, इनका ये भी ले लूं, इससे ही मेरी कोई शान बन जाए, मैं इनके कपड़े भी ले लूं, मैं इनके तौर तरीके भी ले लूं, मैं इनके रस्मों रिवाज भी ले लूं, हिंदुओं के भी ले लूं, ईसाइयों के भी ले लूं, यहूदियों के भी ले, सबके ले लूं मैं, क्योंकि ये खुद फकीर है ना, जो खुद पेट भरा हुआ हो वो किसी का नहीं कुछ लेता। जी हाँ, जब मुसलमानों की वो शान थी दुनिया में, और अल्लाह ताला हमें और हम नहीं तो हमारी नस्लों को अल्लाह उरूज दिखाए इस्लाम का, कि जब इस्लाम उरूज पे था तो वो लोग हमारी चीजें देख के बन लेते थे, वो पहनना चाहते थे वो चीज, तो वो कह रहे हैं नहीं हम वो नहीं चीजें पहनेंगे, हम वो कपड़े नहीं पहनेंगे, हम मुसलमानों की नकल नहीं करेंगे, वो नीचे हैं। आज देखो ये नकल करना जो है ना, यही बताता है कि तुम कहाँ खड़े हुए हो, यही बताता है कि तुम्हारे अंदर खुद कुछ नहीं रह गया, इसलिए तुम उनसे चीज ले लेके और अपने आप को बड़ी चीज बनाने की कोशिश करते हो, क्योंकि अपने दीन में आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं होता ना जब, कि ये है मेरी शान, ये है मेरी आन, ये है मेरी इज्जत, जब आप उसको इज्जत की चीज नहीं समझते, उसको शान की चीज नहीं समझते, तब आप दूसरों से जाके चीजें लेते हैं ना। वरना जिसको अपने दीन में प्राइड हो कि मेरा दीन, इससे बढ़ के क्या चीज है, वो कभी भी नहीं किसी की चीज लेगा। तो ये चाहते हैं कि अपनी फूकों से इस चिराग को बुझा दें, अपनी फूकों से इस दीन को मिटा दें, और अल्लाह इसका इनकार करता है। अल्लाह ताला ये नहीं चाहता, ये चाहते हैं। अल्लाह ताला तो क्या चाहता है, अल्लाह ताला नहीं चाहता ये, अल्लाह ताला इसका इनकार करता है। इल्ला अन युतिम्मा नूरहू, मगर ये उसकी चाहत क्या है, वो उसकी चाहत ये है कि पूरा कर दे अपने दीन को, अपने नूर को। ये नूर किसको कहा गया, अल्लाह के दीन को, यानी इसको क्लियर कर दे सबके सामने, और इसको सब मिलावटी दीन जो पहले थे उनसे पाक कर दे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो कितनी तरह के अधियान थे, सब गुमराही पे मुब्तला थे, सब जो कोई अपने आप को दीने इब्राहिमी पे कहता था वो भी शिर्क में पड़ा हुआ था, जो ईसा अलैहि सलाम के दीन पे, मूसा अलैहि सलाम, सब रास्ते से हट चुके थे, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने दीन को मुकम्मल किया ना, फिर मुकम्मल कर दिया, चाहे कितना ही किसी को बुरा लगे, वलऊ करी हल्के याफिरून, चाहे काफरों को ये चीज हजम ना हो, चाहे वो ये इसके रास्ते में कितने ही रोड़े अटकाएं, अल्लाह ने अपना दीन मुकम्मल करके रहना, और उसने कर दिया। सुभान अल्लाह। तो अब ये दीन है जो कयामत तक के लिए है, और इसको कोई मिटा नहीं सकेगा, कितना ही नेगेटिव प्रोपोगंडा इसके खिलाफ करते रहे, इसको मिटा देना कि ये ना एग्जिस्ट करे, ये नहीं हो सकेगा। ठीक है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू, वो अल्लाह वो जात है जिसने अपने रसूल को भेजा, किस चीज को दे के भेजा, बिल हुदा, हिदायत के साथ भेजा, यानी अल्लाह ताला ने अपने नबी को जो चीज दे के भेजा ना, वो सरासर हिदायत है। वो क्या चीज है जिसको दे के भेजा, ये वही, ये कुरान हदीस, ये अल्लाह ताला ने अपने नबी को दे के भेजा हुआ। इसका मतलब है कि इसके अलावा, इसको छोड़ के कोई चीजें आपको कोई बताता है तो वो हिदायत का पैगाम नहीं है, हिदायत नबी अलैहि सलातो वसलाम ही लेकर आए। वह दीन इल हक, और दीन हक, तो हिदायत क्या है, कुरान और हदीस, और दीन हक क्या है, ये इस्लाम। अल्लाह ताला ने ये दे के अपने नबी को भेजा किस लिए, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, ताकि तमाम अदियान पे इसको गालिब कर दे, ये दीन कयामत तक महफूज रहे, सारे अदियान पे ये गालिब रहे, ये ऐसे नहीं होगा जैसे कि दूसरे अदियान में हुआ कि कभी कोई चीजें उन्होंने बिल्कुल ही उलट पुलट कर दी। वो दीन के हुलिये ही खत्म, वो जो ओरिजिनल थे वो रहे ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते आज। ऐसे नहीं होगा, ये तमाम अधियान पे ये गालिब आ जाएगा, क्योंकि ये इसके अंदर वो पावर है। लेकिन ना दीन अल हक होता ही वो हक, हक का मतलब ही क्या है? हक का मतलब वो है कि जिसको साबित करने के लिए आपको कोई दलील की जरूरत ना हो। हक वो है जो अपना आप खुद बोलता है कि मैं सच हूं, वो सच्चाई खुद अपने आप को बताती है, उसके लिए कोई सबूत नहीं चाहिए होता। तो ये तमाम अधियान पे गालिब आ जाएगा, यानी अपने दलायल में, ठीक है, ये गालिब होगा, कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। किसी को आप क्रिश्चियन, अब ज्यादा तो क्रिश्चियनिटी ही है ना दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा नंबर में है, वो क्रिश्चियन है। आप उस दिन को ले, यहूदी तो ऐसे ही बहुत थोड़े से हैं, आप उस दिन को उठा लें, उनके पास कोई दलील नहीं है, वो अपनी ट्रिनिटी को भी साबित नहीं कर सकते। अब दुनिया के अंदर मादी लिहाज से भी इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि ये दीन गालिब होगा, जब ईसा अलैहि सलाम आएंगे ये दीन गालिब होगा। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, रूए जमीन पर कोई कच्चा पक्का मकान नहीं रहेगा जिसमें इस्लाम का कलमा दाखिल ना हो जाए, हर एक तक पहुंच जाएगा। कोई कच्चा पक्का मकान ऐसा नहीं रहेगा जिसमें अल्लाह ताला कलमा इस्लाम को दाखिल ना कर दे। वो इज्जत वालों को इज्जत देगा और जलीलों को जलील कर देगा, यानी जो इसको एक्सेप्ट करेगा उसको ये इज्जत दे देगा, और जो नहीं एक्सेप्ट करेगा वो जलील हो जाएगा। तो यानी इस्लाम का कलमा पहुंच जाएगा हर तरफ। असल में बात ये है, देखिए ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई कर दी थी, और आपकी हर बात सच है, और वाकई एक दिन ऐसा होगा। असल मेरा आपसे सवाल ये है कि इसमें मेरा और आपका क्या हिस्सा है, ये मैटर करता है। दीन सारा फैल जाए और अगर मेरा उसमें हिस्सा ना हो तो मुझे तो कुछ भी ना मिला। और अगर दीन हर जगह नहीं फैला लेकिन मैंने अपने अंदर, मैंने अपना हिस्सा उसके अंदर डाला हुआ है, तो मैंने कुछ पा लिया। तो बात ये है, इसने तो फैलना ही है, इसने तो हर जगह पहुंचना है, लेकिन अब मैं और आप अपना कितना शेयर इसमें डालते हैं, ये है सवाल। मैं और आप कितनी मेहनत करते हैं इसके लिए, और ये दीने हक है, इस बात को याद रखना चाहिए। ये वो नहीं है जिसके लिए आपको बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़े इसको साबित करने के लिए, जैसे उन बेचारों के पास तो कोई चीज़ है ही नहीं, उनकी तो अपनी किताबें भी प्रिजर्व नहीं है, उसके अंदर इतनी चेंजेस हो गई हैं, वो क्या लेकर आए। ये तो बस वो है कि ये वो चराग है, इसको तो जहां जला देंगे वह खुद रोशनी देने लगेगा, खुद अपना आप बताएगा। तो अल्लाह ताला इसको सारे अधियान के ऊपर, सारे के सारे के ऊपर गालिब करके रहेगा, और बाकी जो झूठे हैं, जो अल्लाह की तरफ से हैं ही नहीं दीन, वो तो बिल्कुल ही, उन्होंने तो बिल्कुल ही बेसलेस है ना। आप बाकी हिंदुइज्म को देख लें, चाहे वो आज कितना ही पनप रहे हैं, कितना ही उनकी तरक्कियां हो रही हैं, उनका दीन क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, उसकी कोई बेस नहीं है, इसलिए वो कोई प्रीच ही नहीं कर सकते। क्या करेंगे? वो अलग बात है कि आज हमारी हालत ये हो चुकी है कि हम उनके, जिन जिनके खिलाफ ही हमारा दीन आया था, जिनके मुकाबले में ही आया था बुत परस्तों के, आज हम उनके आगे इतना बिछ गए कि हम उनके मंदिरों को विजिट करते हैं और उनको अप्रिशिएट करते हैं। अदरवाइज उनके पास कुछ है नहीं कि वो हमें बताएंगे जी हमारा दीन तो ये। कभी आपने उनको फख्र करते देखा अपने दीन? क्या है उनके पास? वो कोई बात ही नहीं कर सकते, एक मुंह भी नहीं होता है। जो जहां पे भी जाता है ना, वो अपनी जुबान से अपने दीन की बात करने में जरा झिझक महसूस नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि ये हक है। बाकी आप लोगों से पूछ लें, उनको वो गुमसुम ही रहते हैं, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं है, वो क्या बताएं। लौकर रिहल मुशरिकों, चाहे मुशरिकों को कितना ही बुरा लगे, मुनकिरीन को, चाहे जो पहले काफिर थे, चाहे उनकी बात कर लें, चाहे मुशरिकों की, उनको तो दिल नहीं करेगा कि ये कभी दीन आगे बढ़े या इसका गलबा हो। लेकिन चाहे कितना ही उनको इस पे गुस्सा है और उनसे बर्दाश्त ना हो, लेकिन अल्लाह ने ये करके रहना, तो ये डोमिनेट करेगा सब रिलीजन्स पे। है, तो मैंने आपको बताया कि मादी लिहाज से तो करेगा एक दिन इंशाल्लाह कि सब तरफ कलमा अल्लाह का फैल जाएगा, जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो सब मुसलमान हो जाएंगे। लेकिन अदरवाइज अगर इस तरह नहीं भी है तो तब भी दलील के मैदान में कोई इस दीन का मुकाबला नहीं कर सकता। याद रखिए, आज मुसलमान को जवाल आया है, इस्लाम को नहीं आया। इस्लाम फिर वैसे ही खड़ा हुआ है जैसे आज से 1400 साल पहले खड़ा था, उसको जवाल नहीं है। वो तो हमारे अपने करतूत हैं जिनकी वजह से हमें जवाल आया। तो बात अगर करनी किसी से तो मुसलमानों की बात नहीं, इस्लाम की बात करो। वहां से वो शुरू करते हैं, अगर ये इतना ही सच्चा होता तो फिर आप इतने गिरे पड़े क्यों हैं, फिर आप क्यों जलील हो रहे हैं। तो वो तो हमारी अपने कसूर है ना, मगर इस्लाम के ऊपर क्या तुम कोई बात निकाल के बता सकते हो सिवाय इस नेगेटिव प्रोपेगेंडा के जो ये अपने मुंह से कर रहे हैं और करते चले जा रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, इन्ना कसीरन मिनल अहबारी वर रहबानी, अब फिर उनके अहबार और रहबान की बात आई, बहुत सारे इनके अहबार, सारे नहीं मगर बहुत सारे इनके अहबार और इनके रोहबान, लय्याकुलूना अमवाल अन्नासी बिलबातिल, ये लोगों का माल खाते हैं बातिल तरीके से। एक हक तरीका भी है, जैसे आपने कोई चीज़ खरीदी, आपने अपने पैसे उसको दिए, वो उसके लिए जायज़ है, आपने उसे चीज़ ली थी, लेकिन ये बातिल तरीके से खाते हैं। ये कैसे बातिल तरीके से खाते हैं, क्या तरीके थे इनके लोगों के माल खाने के, देखें बहुत सारे इन्होंने तरीके निकाल रखे थे। पहले तो ये तरीका कि फतवे गलत देते थे, अपने मनमाने फतवे दे देते थे। जाहिर है जिसको फतवा दे रहे हैं उसकी मर्जी का दे देंगे तो वो तो खिलाएगा पिलाएगा ना, तावीज़ गंडे बना के वो लोगों को दिया करते थे, वो भी बेचते थे, निजात नामे भेजते थे कि तेरी निजात है ना, अब भाई तू तेरी माफ़ी हो गई, तो वो भी पैसों पे बिकते थे। अब बख्शिश का भी समझ लें कि अल्लाह माफ़ करे कि तुम्हारी बख्शिश हो गई है, ये मैं लिख के दूंगा, अब ये मैं लिख के दूंगा ये इतने डॉलर का है, खुद सोचे। इसी तरह जन्नत के परवाने लिख के देते थे। तो इनके तरीके ऐसे थे कि जिससे ये लोगों का माल नाहक खाते थे, ये लोगों के माल को जो इनके लिए जायज नहीं था इस तरह से करना, इसके नजराने लेते थे। आप देखें इसी तरह किसी की शादी कराना, किसी के जनाजे पढ़ाना, किसी को जो भी मजहबी किताब है उसकी तालीम देना, उसके ऊपर बड़े बड़े माल बटोरना, इसी तरह दीन का इल्म हासिल करना सिर्फ माल हासिल करने के लिए, तो सोचती हूँ वो तो क्या उनकी बातें हैं, ये तो ऐसे लगता है हमारी बातें। और वाकई हमें इसलिए बताई गई हैं या यो लदीना आमनू कह के मुसलमान भी इस पे इस चीज के अंदर वो भी ना मुलव्विस हो जाएं, कहीं वो भी ऐसे काम ना करने लगे हैं। ईमान वालों देखो उनका क्या हाल हुआ, उनमें से बहुत सारों ने ये किया है, क्यों हमें क्यों बताया जा रहा, हमें क्यों बताया कि तुम ना करना, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम यकीनन अपने से पहलों की रविश पर चल पड़ोगे, उनकी मुशाबहत करोगे, जरा भी फर्क नहीं रहेगा। लोगों ने पूछा यहूदो नसारा की, आपने फरमाया हाँ और किसकी, उनकी। तो यानी उनकी जैसी बातें और उनके जैसे कामों से बचना, इसलिए कि ये लोग लोगों का माल खाते थे, गसब करते थे, क्योंकि ये बड़ी एक पोजीशन होती थी ना, यानी बड़े आलिम हैं, आज भी देखें वो पादरी जो कितनी बड़ी उसकी इज्जत है, तो उनसे लोगों से ये तोहफे लेते, हदिये लेते, बड़ी पोजीशंस लेते, कई चीजें थी जो बगैर इन पैसे के वो हो नहीं सकती थी, तो उनके ऊपर पैसे बटोरते थे। तो इनका ये हाल हो चुका था, इसी के ऊपर बताया गया कि देखो लोगों के नाजायज माल खाते थे, बातिल तरीके से धोखे फरेब के साथ हड़प करते थे लोगों के माल। वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से रोकते, अल्लाह के रास्ते से रोकना ही हुआ ना, जब माल खुद खा लिया तो अल्लाह के रास्ते में देने की तो बात नहीं, फिर तो बस खुद ही अपनी तिजोरियां भरी ना। देखिए जब दीन मजहब जो है ना एक दुकानदारी बन जाए ना, तिजारत या पेशा बन जाए, या एक दुकानदारी बन जाए तो फिर यही होता है। फिर तो जाहिर ही बात है रिश्वतें भी लेते थे ये लोग, एक्सप्लॉइट करते थे लोगों को, झूठी कहानियां फैलाते थे उनके अंदर के भाई ये ऐसे और ऐसे, और उसके बाद पैसे ले लेते थे। और आज भी आप देखें ये जो आपके गद्दी नशीन बैठे होते हैं क्या करते हैं ये, या ये जो दम करने वाले, या ये जो तावीज लिखने वाले, या ये जो सब ये क्या कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी फीसें अपनी रखी हुई हैं, दुकान ही हो गई ना। और कहने को ये रोहबान है जी, बड़े दरवेश हैं, बड़े पहुंचे हुए हैं जी, वो तो उनको दुनिया से कोई लगाव ही नहीं है, और बड़े उलमा हैं, बड़े ऐसे हैं। फिर उसके बाद देखो कि जनाजा पढ़ाने का भी वो कहते हैं ना, इतने पैसे नहीं है तो हम नहीं जनाजा पढ़ा सकते, जाओ किसी और से पढ़वाओ, हम नहीं निकाह कर सकते, जाओ कहीं और। तो ये लोग फिर अल्लाह के रास्ते से भी लोगों को बदजन कर देते हैं ना, रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से। लोग फिर कहते हैं जी इनके पास क्या जाना, ये तो सिर्फ पैसा ही मांगते रहते हैं। तो ये गद्दी नशीनों का भी ये हाल है, इतना तरस आता है बाज दफा देख के कि उनके वहां पे मिजारों पे इतने गरीब लोग जिनकी हालत बता रही होती है कि पता नहीं इनके पास तो कुछ खाने को भी है या नहीं, लेकिन उनके पास भी जो भी मेहनत मजदूरी करके आता है वो इनके उसमें डाल देते हैं, चादरें चढ़ा रहे हैं लोग, उसमें इतने पैसे डाले हैं, खुद गद्दियों पे बैठे हुए हैं, खुद बाहर के मुल्कों के टूर कर रहे हैं, और इन गरीब लोगों से पैसा चूस रहे हैं। सारा बिजनेस है ना उनका। फिर देखिए आप हमारे मुल्कों में तो बहुत ही ये हाल है कि किसी को फौत होता है तो वो 40 दिन की वो अपना मेन्यू लिख के भेज देता है अपने मौलवी साहब जो मस्जिद के होते हैं, कि ये अब बस आप खाना भेजते रहेंगे, जुमेराते बनाई हुई हैं, जुमेरात को हर जुमेरात बैठ के खाना खा रहे। कि किस वजह से, ये कहाँ से है, आप लोगों के माल बटोर रहे हो। वल्लदीन यकनीजून अज़्ज़हब वल्फिद्दत, और वो लोग जो जमा करते हैं सोना और चांदी, और इन्होंने इसी तरह लोगों से माल बटोर बटोर के इतना जमा कर लिया हुआ था कि बस उड़ाते थे फिर उसको, यानी इतना उनके पास सोना चांदी जमा हो गया था। जाहिर है पोजीशन है, वो लोग भी देते हैं आके, ये अलग बात है। देखिए एक बात को समझना चाहिए यहाँ पे, एक एक्सट्रीम वो है कि आपके जो उलमा हैं या आपके जो इस तरह के पढ़ाने वाले हैं वो बेचारे जाहिर है दीन का काम कर रहे हैं तो उनके पास तो कोई वक्त नहीं है कि वो जाके जॉब्स करें या कोई अपना बिजनेस करें। तो अब वो अगर इमाम है मस्जिद के तो अब आप उनको बिल्कुल ही ऐसी हालत में छोड़ दें कि पहनने को जूता ना हो और ढंग के कपड़े भी ना पहने हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। किसी ने बताया था, मैंने कहा कि सऊदी अरब में जो वहाँ के इमाम होते हैं ना, ये जैसे यहाँ पे हम उनको समझते हैं कि ये तो पता नहीं फकीर है, ये तो हमारे पीछे भागे, वहां पे लोग उनके पीछे भागते हैं, उनकी इतनी शानो शौकत होती है, इतनी उनकी इज्जत होती है, वो भी अच्छे लिबास में और अच्छी गाड़ी में और अच्छे रहन सहन के साथ होते हैं, और बल्कि वो लोगों पे खर्च करते हैं, उनको खानों पे बुलाते हैं, उनकी यानी आवभगत करते हैं, इतना उनके पास होता है। तो एक ये एक्सट्रीम है कि बिल्कुल ही उनको ऐसे छोड़ दिया जाए कि उनकी कोई इज्जत ही माशरे में ना हो रहे, और हर कोई उनको बस अपना नौकर समझे और डांट के भेज दे कि ये क्या, ये तो हमारी नौकरी करते हैं और इनके पास क्या है, और ये तो हर बात मांगने वाले कोई फकीर है, ये भी गलत बात है। दूसरी तरफ इनकी जो ये हालत है ये भी गलत है क्या ना। तो उनकी भी देखें, वो जो सफेद पोशी से रह रहे हैं उनके बारे में सूरह बकरा में हमने आयत पढ़ी थी, लिलफुकरा वाली सूरह बकरा जो खत्म होने वाली, तो वहां पे उनके बारे में भी आया कि वो बेचारे अपनी जरूरत किसी को बताते नहीं है और उनकी चेहरों से आप उनको पहचान लेते हो। तो उनको ऊपर खर्च करना वो ठीक है, लेकिन ऐसे ही लोग अगर इसको धंधा बना दें, इसको एक कारोबार बना ले, लोगों से लाखों ले रहे हैं और फिर जमा करते जा रहे हैं और फिर अपनी शादियों पर उड़ा रहे हैं और फिर अपने ऐसी ऐसी खजाने अपने बना लिए हैं, और वला युन्फिकूनहा फी सबीलिल्लाह, और नहीं वो खर्च करते उसको अल्लाह के रास्ते में, फबशिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, बस खुशखबरी दो उनको दर्दनाक अज़ाब की। तो ये फिर यहाँ गलत हो जाता है, सही है। और फिर बताया गया अब ये वाली आयत उसके लिए कि जो खजाने जमा करता है और उसमें से अल्लाह के रास्ते में नहीं देता, यानी ना जकात दी ना कोई सदकात किए, बस जमा करते गए। अगर जकात दी जाए तो फिर अजाब अलीम का नहीं है, ठीक है। तो फबशिर हम का मतलब ये उनके लिए एक तंज है कि तो अब खुशखबरी तो अच्छी चीज की होती है, लेकिन तुम्हारे लिए खुशखबरी ये कि तुम्हारे लिए दर्दनाक अजाब है। तो माल जमा करते रहना अगर उसके अंदर से हक नहीं दिया गरीबों का मिस्कीनों का और जकात नहीं निकाली, तो वही माल इंसान के लिए अजाब का बाइस कयामत के दिन बन जाएगा। इसी बारे में हजरत उमर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल किया था, ये मुसनद अब्दुल रजाक में भी पहले ये हदीस बता देती हूँ आपको कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सोने चांदी वालों के लिए हलाकत है। तीन मर्तबा आपका यही फरमान सुन के सहाबा पे तो बड़ा मुश्किल गुजरा और उन्होंने सवाल किया फिर हम किस किस्म का माल रखें। हजरत उमर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हालत बयान करके यही सवाल किया तो आपने फरमाया जिक्र करने वाली जुबान, शुक्र करने वाला दिल और दीन के कामों में मदद देने वाली बीवी, यानी ये इन खजानों से बेहतर है, इन जमा करने से बेहतर है। तो हज़रत उमर यही फरमाते हैं कि बगैर ज़कात के माल से इस मालदार को दागा जाएगा, उसके लिए बहुत सख्त सज़ा है। यानी जो इंसान माल तो जमा करता रहता है लेकिन उसमें से किसी का हिस्सा नहीं निकालता जो जिनके हक है उसके ऊपर, जैसे रिश्तेदारों का हक है, वालदेन का हक है, बीवी बच्चों का हक है, गरीबों मिस्कीनों का हक है। मुसनद अहमद में है कि सोने चांदी की मुजम्मत की ये आयत जब उतरी और सहाबा ने आपस में चर्चा किया तो हजरत उमर ने कहा कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके पूछता हूँ, अपनी सवारी तेज करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिले। और रिवायत में है कि सहाबा ने कहा फिर हम अपनी औलादों के लिए क्या छोड़ जाएं, यानी क्या फिर हम सारा दे दें, इसको कभी जमा ना करें, कुछ विरासत ना हो। इसमें है कि हजरत उमर के पीछे ही पीछे हजरत सोबान भी थे, तो आपने हज़रत उमर के सवाल पे फरमाया कि अल्लाह ताला ने ज़कात इसीलिए मुकर्रर फरमाई कि बाद का माल पाक हो जाए। मीरास के मुकर्रर करने का जिक्र किया जा रहा है कि जमा करने में कोई हर्ज नहीं है। हज़रत उमर ये सुनकर मारे खुशी के तकबीरें कहने लगे, तो आपने फरमाया लो और सुनो, मैं तुम्हें इससे भी बेहतरीन ख़जाना ना बताऊँ। नेक औरत जब उसका खामिद उसकी तरफ नज़र डाले तो वो उसको खुश कर दे, और जब हुक्म दे तो फौरन हुक्म की तामील करे, जब वो घर में नहीं हो तो उसकी इज्जत की हिफाजत करें, ये इस खजाने से भी ज्यादा बेहतर है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बता दिया कि ये इन चीजों जो लोग खजानों को जमा करते हैं, जिसके पास ये है वो इस खजाने से ज्यादा अमीर है, जिसके पास ऐसी बीवी हो या जिसके पास जिक्र करने वाली जुबान और शुक्र करने वाला दिल हो। यौमा यहमा अलैहा फी नार जहन्नम, जिस दिन ये तपाया जाएगा, ये सोना चांदी तपाया जाएगा आग पर, जहन्नुम की आग के ऊपर ये इसको गर्म किया जाएगा। गर्म भी छोटा लफ्ज है, यानी इसको खूब दहकाया जाएगा। फतुकवा बिहा जिबाहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, फिर इससे दागा जाएगा उनकी पेशानियों को, उनके पहलुओं को और उनकी पीठों को। इसी वजह से तो वो लोग सहाबा कराम डर गए कि ये कैसी बात है, ऐसा हो जाएगा अगर हमने कुछ जमा किया तो। और कहा जाएगा उनसे हादा मा कनस्तुम लि अनफुसिकुम, ये है जो तुमने जमा किया था अपनी जानों के लिए। फजूकु मा कुंतुम तकनीजून, तो चखो फिर उसका मजा जो तुमने जमा किया था। तो यानी ये उनकी सजा होगी जो लोग जमा करते, मगर ये उस जमा करने के बारे में है जिसमें से जकात ना दी जाए, याद रखें। तो तब वो माल उसके लिए ऐसा बन जाएगा। और इसमें ये हमें ये समझना चाहिए कि जब हमारी अपनी पोजेशन के अंदर चीज़ें आ जाती हैं ना, चाहे किसी की नई शादी हुई है या जो भी इस तरह के मामलात हैं, जिस वक्त उसके पास कोई इस तरह इतनी अमाउंट का सोना और चांदी जिसके ऊपर ज़कात बनती है, वो एक साल तक उसके पास रहे तो उसके बाद उसको ज़कात निकालनी है 2.5%। ये नहीं सोचना मेरे तो हस्बैंड देते नहीं है, मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो इस जेवर में से ही कुछ बेच के और ज़कात दें, ये नहीं कि आराम से बैठे रहें अब हम क्या करें। ये तो उनकी तरफ का था, उनकी तरफ का था या इनकी तरफ का था, अब तो आपके पास है, आपका हो गया ना, तो अब आपको निकालनी है। एक हमारी एक बहन है जिन्होंने सवाल किया था ईमेल की, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो अब कुरान पढ़ के तो मुझे अब सोच आती है कि हमने तो साल हा साल से ही ज़कात नहीं कभी दी, क्योंकि उनके हस्बैंड ये सोचते थे कि टैक्स जो हम पे कर देते हैं वही ज़कात है। टैक्स ज़कात नहीं है, ये तो आपसे हुकूमतें आपकी ले लेती हैं ज़बरदस्ती, आप नहीं देंगे तो क्या करेंगे, ये ज़कात नहीं है, आपको अपनी ज़कात निकालनी है। अब इतने सालों की उनकी ज़कात उनके ऊपर हो गई। मैं यही कहती कि शुक्र अदा करें आप कि आपको जिंदगी में पता चल गया कि यही जो खजाने हैं, यही जो गोल्ड के सेट हैं, यही जो सिल्वर के सेट है, डायमंड इसमें शामिल नहीं है, उसके ऊपर नहीं है ज़कात, लेकिन ये जो गोल्ड और सिल्वर हैं या जो कैश आपने रखा हुआ है, जो भी आपकी सेविंग्स हैं, ये इन सब के ऊपर ज़कात है। और ये गोल्ड सिल्वर जिसको आज इतना संभाल संभाल के रखते हैं और देख देख के खुश होते हैं, इसी को तपाया जाएगा, ये ताकि यही इंसान जिसने इस चीज को कितनी खुशी के साथ, कितनी शौक के साथ इसको बनाया था और कभी इसके ऊपर ज़कात नहीं देता था, उसको पता चले कि देखो आज यही चीज मेरी सजा का बायस बन गई, वही चीज जिससे उसको मोहब्बत थी वही उसके लिए अजाब बन गई। अल्लाह दिखाता है कि ये देखो यही चीजें हैं ना, यही तुम्हें पसंद थी ना, यही तुम्हारे खजाने थे ना, यही थे जिसको जोड़ जोड़ के तुम रखते थे। और चेहरा उलमा लिखते हैं तफसीरों में कि चेहरे की बात आई, फिर साइड की आई, फिर पीठ पीठ की आई, तो ऐसा क्यों है? वो कहते हैं कि जब किसी गरीब मिस्कीन को देखते थे तो तेवरियां चढ़ा लेते थे कि हाय आ गया मांगने के लिए, फिर अच्छा वो अगर फिर मांगता रहे तो साइड कर लेते थे, फिर और मांगता रहे तो यानी बैक ही कर लेते थे, उसकी तरफ चले ही जाते थे। तो इन सब को तपाया जाएगा। और आप देखें ये जो यहाँ पे लफ्ज आया ना फतुकवा, फिर दागा जाएगा, तो इसे इमेजिन करें, अगर इमेज मतलब जाहिर है वहां के अजाबों को तो इंसान कभी, अल्लाह ताला माफ करे और सबको महफूज रखे, इनके बारे में तो कभी सोच ही नहीं सकते कि क्या वहां के अजाब होंगे, मगर सोचे कि एक स्त्री है उसको फुल पे करके और उसके बाद किसी के ऊपर रख दिया जाए तो क्या हाल हो उसका, उसके चेहरे पे, उसकी साइड्स पे, उसकी पुश्त पे, ये आसान काम नहीं है। आज पैसे का इतना ज्यादा महबूब होना कि उससे ज़कात क्यों हमें देनी पड़ गई, ज़कात हमें निकालनी पड़ गई, ज़कात के ऊपर इतनी प्रॉब्लम हो जाना, लेकिन क्या ये चीज़ इंसान बर्दाश्त कर सकेगा? इंसान की इसी इज्जत की जगह, चेहरा तो वो चीज़ है कि जिसको पेशानी या चेहरा, इंसान इसको सबसे पहले किसी भी खतरे से सबसे पहले इसको छुपाता है, ये इज्जत की चीज़ है, अपने चेहरे पे इंसान कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करता कि कोई ऐब हो, और कहाँ ये कि उनकी पेशानियों को इस तरह दागा जाएगा। इसी तरह एक और जगह पे आता है हज़रत ताऊस फरमाते हैं कि इसका माल एक अजदहा बन के उसके पीछे लगेगा, जो उस सामने आ जाएगा उसको चबा जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो अपने बाद खजाना छोड़ जाए, इसका वो खजाना कयामत के दिन जहरीला अजदहा बन के जिसकी आंखों पर नुक्ते होंगे इसके पीछे लगेगा, वो भागता हुआ पूछेगा तू कौन है, वो कहेगा मैं तेरा जमा किया हुआ माल हूँ, तो मरने के बाद तू छोड़ गया था तेरा खजाना हूँ। आखिर वो उसको पकड़ लेगा, उसका हाथ चबा जाएगा, फिर बाकी जिस्म में, अस्तगफिरुल्लाह। इसी तरह और भी मुस्लिम में है कि जो शख्स अपने माल की जकात ना दे उसका माल कयामत के दिन आग की तख्तियों जैसा बना दिया जाएगा, समझ ले आग ही है ना, ये तो इस तरह बहुत छोटी सी चीज है, जरा सी भी हाथ को लग जाए तो कितनी तकलीफ होती है, कितनी सीसी निकलती है, कितना भागते हैं हम कोई ऐसी चीज ऊपर लगाने के लिए कि जिससे ठंड पड़ जाए, और कहाँ तख्तियां हैं पूरी, उनसे पेशानी और पहलू और कमर दागी जाए, और ये कब तक होता रहेगा, 50,000 साल तक, जब तक लोगों के फैसले हो नहीं जाते उसका यही हाल रहेगा। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, यानी 50,000 साल का दिन है ना कयामत का, तो पूरा कयामत का दिन उनके साथ यही होता रहेगा, फिर उसके बाद जो उसकी मंजिल होगी जन्नत या जहन्नम, जिस तरफ भी वो डाला जाएगा, जो उसका मकाम होगा फिर वहां ले जाया जाएगा, ये उससे भी पहले की बात है, समझ आई? तो ज़कात कोई छोटी बात नहीं है, और इस माल से खर्च करना गरीबों मिसकीनों पे ये कोई मामूली बात नहीं है। ये समझ लें, हम अपने आप को आखरत के अजाब से बचा रहे हैं, ये उसकी कीमत हम दे रहे हैं। हम छोटी सी कोई बीमारी से बचने के लिए भी, उसके लिए वैक्सीन है या जो भी और कोई चीज़ें हैं, उससे बचने के लिए, उस बीमारी से हम कितना पैसा खर्च करने को तैयार होते हैं। हम कहते हैं ये भी थोड़ी कीमत है, कोई बात नहीं, पैसा ले लें लेकिन मैं ठीक हो जाऊं, मैं इस बीमारी से निकल आऊं। आप मुझे बताएं कि इतना बड़ा ये अजाब, ये अजदहे वाली भी बात, और जो यहाँ पे कुरान पाक में बताई गई, सोचें कि अगर जकात नहीं देते तो ये है उसका अंजाम। तो जकात देना तो बहुत छोटी कीमत है इस अंजाम से बचने के लिए। इतनी माल से क्या मोहब्बत कि अल्लाह ताला के फरमान को भी इंसान भुला दे। और देखें, अगर हमारे मुल्कों के अंदर वाकई सही तरीके से ज़कात अदा की जाए ना, तो कोई गरीब नहीं रहेगा, इतनी इतनी बड़ी ज़कातें बनती हैं, लेकिन नहीं देते, बस इसी तरह के हीले बहाने किए हैं, और हीले बहानों से ज़कात को अपने ऊपर जो है ना वो कर लेते हैं कि ज़कात ना देनी पड़े। इस जगह पे तो ये तक उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि जब 1 साल खत्म होने लगे, फिर तो शौहर के पर जो पैसा है ना, या उसके पास जो भी चीजें हैं, वो सारी बीवी के नाम कर दे, फिर साल भर तक बीवी के रहे, जब उसका 1 साल मुकम्मल होने गए, वो अपने शौहर के नाम करते, दोनों को ज़कात नहीं देनी पड़ेगी। ये हीले बहाने देखो कैसे बनाएंगे। अल्लाह ताला हमें माफ करे। इन इद्दत शहूरी इंदल्लाह इस्ना आशारा शहरन फी किताबिल्लाह। इद्दत शहूर, जो महीनों की जो गिनती है अल्लाह के यहाँ, वो कितनी है? 12। इसका मतलब इंसानों ने नहीं ये बनाए हुए। आप सोचते होंगे पता नहीं 12 मंथ्स का एक ईयर जो होना है, ये आज आप अपने बच्चों को भी बताइएगा, ये क्या लोगों ने बनाए, इंसानों ने बनाए, या कहाँ से हमें पता चले कि 12 ही होने चाहिए? ये 12 जो है ये अल्लाह की किताब में, अल्लाह की किताब कौन सी? लोहे महफूज, जहाँ पे सारा रिकॉर्ड हर चीज़ का पड़ा होता है, तो वहां पे अल्लाह ने पता है कब से लिख दिया हुआ था? यौम खलक समावाती वल अर्द, जब से अल्लाह ताला ने आसमानों जमीन को बनाया, तो ये गिनती लिख दी कि साल 12 महीने का होगा, महीने 12 ही होंगे। ठीक है, अब वो हमारे कमरी महीने भी देखे 12 हैं, शमसी महीने भी 12, तो ये अल्लाह की किताब में लिखा। मिनहा अरबातुन हुरम, इनमें 4 जो है वो हुरमत वाली हैं, और ये भी यानी उस वक्त से ही तय हो गया कि इनका एहतराम होगा, इनमें लड़ाई झगड़ा या जंगो जदल कत्लो गारत नहीं करना, इसमें गुनाहों से बचना है, ऐसे तो हर वक्त में ही बचना है, लेकिन ये हुरमत वाले, इज्जत वाले महीने हैं, जिनमें एक महीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अलग से है, और 3 कंटिन्यूसली हैं। 3 कंटिन्यूसली कौन से? ज़ीक़ादा, ज़िलहज्जा और मुहर्रम, और जो एक अलग से है वो रजब का महीना है। तो ये 4 महीनों को एहतराम दे दिया गया कि इनकी इज्जत करनी है। अब अरबों में बड़ा लूट मार जंगो जदल होता था, मगर देखें अभी इस्लाम नहीं आया था, लेकिन उस जमाने में भी उनको पता था, जमाना जाहिलियत में भी, कि हमने इन महीनों में ये नहीं करना, ये हुरमत वाले महीने शुरू हो गए। ज़ालिक दीनुल क़य्यिम, ये है दीन दुरुस्त, ये है सही दीन, ये है जो अल्लाह ताला ने हिसाब बताया, वह ये है सीधा तरीका। तो यानी बजाहिर देखने में तो लगता है कि दुनिया का काम है ना, ये साल है या महीने, ये तो हमारे काम है, लेकिन ये भी अल्लाह ताला ने बताया, ये भी दीन का हिस्सा बना दिया। ठीक है, फला तज़लिमू फ़ीहिन्न अनफुसकुम, तो ना जुल्म करो इनमें अपने नफ्सों पर। यानी क्या मतलब? इसके 2 माने हैं। एक माना तो ये है कि इसमें जंगें करके और गुनाह करके खुद पे जुल्म ना करो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी महीनों में जरूर गुनाह किया करें, इनमें ना किया करें, ये मतलब नहीं है। लेकिन जैसे आप देखें ना, आपको कहे, कोई कहे कि ये मस्जिद है या ये काबा है, इसमें कोई गलत काम नहीं करना, तो इसका मतलब कि काबे से बाहर जाके कर लें, उस मस्जिद से बाहर जाके कर लें, नहीं बाहर भी नहीं करना, लेकिन एक जगह की अपनी एक इज्जत होती है ना, एक ऑनर होता है, तो उसका ख्याल रखना है। तो यहाँ पे बताया गया कि इन महीनों के अंदर कोई जंग ना करे, कोई गुनाह के काम ना करे, इनकी इज्जत करें, अपने आप पे जुल्म ना करो ये करके। दूसरा माना ये है इसका कि वो लोग ऐसा किया करते थे कि इन महीनों को फेर देते थे, यानी इनकी गिनती में ऊपर नीचे कर देते। आगे हम अभी बात करते हैं उस पे, तो वो भी ना करो। इनको गड़मड़ उन्होंने इतना कर दिया हुआ था, ये भी एक जुल्म है कि सारे साल की शक्ल बिगाड़ के रख दी थी। और इसको, चले अभी बात कर लेते हैं, फिर आगे की आयत आसान हो जाएगी आपके लिए। इसको वो नसी कहते थे, यानी समझ लें। अब मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ। मसलन समझ लें कि कोई कहे भाई दिसंबर में हमेशा, वो गैर मुस्लिम कहे दिसंबर में हमेशा क्रिसमस आती है, हमेशा सर्दी में आती, तो ऐसा करते हैं इस दफा जून को दिसंबर बना लेते, तो 25 जून को हम क्रिसमस कर लेंगे। समझ आई बात? इस तरह ये लोग करते थे कि यानी अगर इनकी लड़ाई चल रही है और लड़ाई में रजब का महीना आ गया, तो अब वो कहेंगे नहीं ये अब रजब नहीं है, अब हमने इसको मसलन हमने इसको रबीउल अव्वल डिक्लेयर कर दिया, हमने इसको शाबान डिक्लेयर कर दिया, अब ये शाबान हो गया, रजब हम बाद में करेंगे। समझ आई? इस तरह करके ये जुल्म है। और कभी ऐसा होता था कि 4 महीने जाहिर हुरमत वाले हैं, आगे पीछे करते रहे, महीने यानी साल का एंड आ गया, अब सिर्फ 2 महीने बाकी रह गए साल में से, अब वो 2 महीने रह गए, अब ये 4 महीने कैसे करें, उलट पुलट तो करते रहे। अब क्या करें, हम इस दफा साल को हम 14 मंथ्स का कर लेते, क्योंकि हमने वो भी तो हुरमत वाले महीने भी तो पूरे करने हैं ना। तो इस तरह से करके ये जुल्म किया करते थे। इसी तरह जब इनका दिल करता था जंग करने का, और आगे तो हुरमत वाले महीने आ रहे हैं, तो उनको चेंज कर देंगे। इस तरह ये हज को भी चेंज कर देते थे। जिलहज अभी नहीं है, जिलहज के भी और होगा, क्योंकि अभी हमारी फसलें तैयार होने वाली हैं, तो इसलिए हम उस वक्त करेंगे जिलहज, ताकि हम हज तब करें जब फारिग हो जाए। यानी इस तरह इन्होंने सारा गड़बड़ करके रख दी थी। तो फला तदरीमु फीहिन्ना अनफुसकुम, इस तरह की कैलकुलेशन में हेर फेर करके भी अपने आप पे जुल्म ना करो, और इन महीनों में गुनाह करके भी जुल्म ना करो। वकातिलुल मुशरिकीना काफ्फतन, और जंग करो मुशरिकों से सबके सब, कमा युकातिलूनकुम काफ्फा, जैसे वो तुमसे जंग करते हैं सबके साथ। यानी वो तो देखते ही नहीं कि हुरमत वाला महीना है या नई महीना है, और ना हमने पहले क्या पढ़ा था कि ना वो किसी रिश्तेदारी का पास रखते हैं, ना किसी मुआहदे का पास रखते हैं, वो सारे मिलकर तुमसे लड़ते हैं, तो तुम भी उनसे फिर लड़ो, फिर तुम भी ना ये देखो कि ये हुरमत वाला महीना है, इसमें नहीं जंग करनी। वालमु अन्नल्लाह माल मुत्तकीन, और जान लो कि अल्लाह ताला तकवा वालों के साथ है। इसलिए मुफस्सिरीन ने लिखा कि इसके बाद ये तो खत्म हो गया कि इस महीने के अंदर जंग नहीं कर सकते, मगर ये अभी तक है कि इन महीनों के अंदर कोई गुनाह का काम नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला मुत्तकीन के साथ है जो अल्लाह से डरने वाले होते हैं हर चीज के अंदर। इन्नमन नसीउ, नसी वो रसम थी, यानी नसी उस चीज का नाम था जो ये करते थे, यानी ये किसी महीने को खुद ही कह देना ये हुरमत वाला है, किसी को कह देना नहीं ये हलाल महीना है ये हराम महीना है, ताकि अपने लिए कन्वीनियंस कर लें। देखिए याद रखें कि दीन के अंदर अपने कन्वीनियंस के लिए चीजों को बदल देना ये जुल्म है, ये नहीं कर सकता, ये किसी की अथॉरिटी नहीं, जबकि ये लोग ये करते थे। इन्नमा नसीउ ज़ियादतुन फिल कुफर, ये इजाफा है कुफर में, ये कुफर तो पहले ही कर रहे हैं, उसके अंदर भी एक एडिशन है। युदल्लु बिहिल लदीन कफरु, गुमराह किए जाते हैं इसके साथ वो लोग जिन्होंने कुफर किया, ये कुफर के लोग इसके जरिए गुमराह किए जा रहे हैं कि वो आग अपनी कन्वीनियंस देखते हैं, और उसके मुताबिक उन्होंने सारे साल को इधर उधर कर दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 10 ज़िलहज में हज किया था, जिसको हज्जतुल विदा कहते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमाना घूम घाम के फिर उसी हालत पे आ गया जिस पर उस वक्त था जब अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन की तख्लीक की थी। यानी ये जो इन्होंने सारी गड़बड़ की हुई थी ना, वो सारा स्ट्रेट होके अल्लाह ताला की, देखें कैसी अल्लाह की हिकमतें हैं, अल्लाह ताला को इल्म है, तो उस वक्त वो सारा अपनी जगह पे आ गया था। लोगों ने जो पहले से की हुई थी ना चेंजेस, वो सारी सही होके इस साल के अंदर सब सही हो गई थी। तो ये लोग इसके जरिए गुमराह किए जाते हैं, ये कुफर में और एडिशन है, पहले ही काफिर ऊपर से ये अपनी इस तरह की मनमानियां कर रहे हैं। देखिए ना इससे क्या होता है, अगर हुरमत वाले महीनों को आगे पीछे कर देंगे तो क्या होगा, हज आगे पीछे हो जाएगा। देखिए और जो उन महीनों की जो हुरमत है वो तो आपने उसका कोई पास ही ना किया। उन महीनों में जंग हो रही है और कोई और महीना अपनी तरफ से ही बना लिया ये हुरमत वाला महीना। उन महीनों में लूटमार हो रही है, उन महीनों में सारा कुछ वो जो मना किया हुआ है वो उस टाइम की हुरमत है ना, तो उसको अपनी कन्वीनियंस से आगे पीछे किया। युहिल्लूना हु आमन व युहर्रिमूना हु आमन, वो हलाल करते हैं एक साथ एक साल और हराम करते हैं एक साथ। क्या नहीं, किसी साल कहते थे हम नसी नहीं करेंगे, किसी साल कह देते थे हम कर लेंगे, है ना। खुद ही एक मजाक बनाया हुआ अपनी। अल्लाह ताला की इन चीजों को भी उन्होंने ऐसे कि हम जैसे हमारे लिए सूटेबल हो, जो हमें सूट करता हो उसके मुताबिक हम करेंगे। अब इनको जब लगता था ना कि 3 महीने अब हुरमत वाले इकट्ठे ही आ रहे हैं तो अब हम इसमें क्या करेंगे, तो बड़ी उनको मुश्किल पड़ जाती थी, तो फिर आगे मुहर्रम को सफर बना लेते थे, सफर को मुहर्रम कह देते थे, जो मर्जी आई। लियुआतियु इद्दत मा हराम अल्लाह, ताकि वो मुआफिक कर लें गिनती जो अल्लाह ने हराम करार दी, यानी जिन महीनों को अल्लाह ने हराम करार दिया ना उनकी गिनती बस पूरी कर लें, उसको बस मुआफिक कर लें, वो बस 4 होनी चाहिए साल में, वो कभी भी 4 हो जाए। फयुहिल्लु मा हराम अल्लाह, बस वो हलाल करे जो हराम किया अल्लाह ने, जो अल्लाह ताला ने हलाल किए थे महीने उनको हर हुरमत वाले महीना बना लिया। जुयीना लहुम सू आमालहुम आमालिहिम, जुयीना खूबसूरत बना दिया उनके लिए उनके आमाल, उनके बुरे आमाल को। ये शैतान करता है कि इंसान के बुरे आमाल को भी मुजयन करके उसको दिखाता है कि इसमें क्या हर्ज है। अल्लाह के हुक्मों को या अल्लाह के कानून को बदलना और अपनी मर्जी से ऐसी चेंजेस करना जो अपने लिए सूटेबल हो, ये जुर्म है, ये कोई खेल नहीं है, ये बस मेरे मुताबिक हो जाए। इन चीजों को भी शैतान ने देखो ब्यूटीफाई करके दिखाया हुआ था। वो इसको बड़ा अपना कमाल समझते थे कि बड़ी अक्लमंदी है ना देखो हमारी, कितने हमने कितने स्मार्ट हैं हम, के हमने देखो कैसे कर लिया। तो जुई ही ना खूबसूरत बना दी उनके लिए उनके बुरे अमाल। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, अल्लाह ताला ऐसे काफिर लोगों को हिदायत नहीं देता, यानी जो हक का इनकार करने वाले उनको हिदायत नहीं मिलती। जाहिर मानोगे तो रास्ता नजर आएगा ना, अगर मानना ही नहीं है तो हिदायत का रास्ता क्या नजर आना है, हिदायत क्या मिलेगी। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نورا ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموالا الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين